الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر کی بات چل رہی تھی اور اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کی دو مختلف صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان کوئی وقت مقرر کر کے، کوئی جگہ مقرر کر کے، کوئی معقول بنائے اور اس کی پابندی کرے، اور دوسرے یہ کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مختلف اوقات اللہ جل جلالہ کا ذکر زبان پر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ فکر، یعنی سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اس کی نعمتوں میں آدمی اپنے ذہن کو لگائے، تو پھر یہ ذکر قلبی کی ایک فرا ہے، ایک قسم ہے. اور پھر اس سے ذکر لسانی کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور پھر جتنا ذکر لسانی کرتے جاؤ گے اتنا ہی اس فکر میں بھی اضافہ ہوگا ان شاء اللہ. لیکن اس فکر میں، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس سے ان باتوں کی طرف ذہن جانے لگتا ہے، نگاہ جانے لگتی ہے جو پہلے نہیں جانے. پہلے غفلت میں وقت گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نعمت سامنے آ جائے تو کوئی خاص اس کے اوپر نہ شکر کے جذبات پیدا ہوتے تھے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان آتا تھا. بس غفلت کی حالت میں اس نعمت کو استعمال کر لیا. جب بزرگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بزرگ کے توجہات سے نوازتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ان باتوں کی طرف ذہن جانے لگتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف کی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو اس بات کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں نا فکر، اور فکر کے نتیجے میں پھر ذکر، اور ذکر کے نتیجے میں پھر فکر، تو یہ حضرت ہمارے فرمانے سے اس کا بہترین طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اگر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو دیکھو تو قدم قدم پر، قدم قدم پر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی بارش نظر آئے گی، بشرطے کہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق ہو جائے. تو نعمتوں کی بارش ہے، اپنے وجود پر بھی غور کر لیا کرو. قرآن کریم میں نے اپنی الفت کو اپنا دکھ ضرور، اپنے وجود پر ہی غور کر لیا کرو. سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضا ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، آنکھ کس طرح کام کر رہی ہے، کان کس طرح کام کر رہے ہیں، زبان کس طرح کام کر رہی ہے، اور سارے جسم کے اعضا یہ تو سامنے ہی نظر آ رہے ہیں، اور جسم کے اندر چھپے ہوئے جو اعضا ہیں، دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، یہ کس طرح کام کر رہا ہے. عجیب و غریب کارخانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. اور شاید یہ بات صحیح ہو کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق اتنی حیرت انگیز نہیں ہے جتنا خود انسان، اتنی محجر العقول کارخانہ شاید کوئی اور نہیں ہے جتنا خود انسان کا کارخانہ. کس طرح یہ آگاہ کام کر رہے ہیں، ذرا سا کہیں اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے تو ساری پھوپھا، ساری اکڑ کو ختم ہو جاتی ہے. वही हाजिर होकर बैठ जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है, परेशान हो जाता है। जरा सा उसको रुपीला हुआ और कुछ से कुछ गड़बड़ हो गई, बीमार हो गई। लेकिन जब तक है तो पता नहीं चल रहा कि क्या क्या नियमत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आता फरमाइश की है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं होता। जब जाती है कोई चीज तो फिर उस तरफ ध्यान रखे तो वो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। एक मरतबा हमारी हमारे हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक खातून ने, वो उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, दांत टूटने लगे थे, दांत टूटने लगे थे तो उसमें ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कभी इस दांत में दर्द हो गया, कभी उसमें हो गया, कभी इसमें फूल गया, कभी उसमें फूल गया, कभी ये निकलवा रही है तो वो निकलवा रही है। तो एक दिन वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने कहा क्योंकि वाले साहब की बहरम थी तो कहने लगे कि जी पता नहीं क्या किस्सा है इन दांतों का कि जब ये आते हैं तब भी तकलीफ देते हैं, जब जाते हैं तब भी तकलीफ देते हैं। ये दांत जो है जाते हुए भी तकलीफ देते हैं, जाते हुए भी देते हैं। फिर जब निकलते हैं दांत तो सर बच्चे को कभी बुखार आ रहा है, कभी दस्त हो रहा है, कभी अजीब बच्चे के ऊपर एक वक्त गुजरता है अच्छा खासा दांत निकलने का, तो आते हुए भी तकलीफ देते हैं और जाते हुए भी देते हैं। ये फरमाया तो हज वाले साहब ड्राइवर के जवाब में फरमाया कि अरे भाई तुम्हें इन दांतों की यही दो बातें याद रही, आते हुए भी तकलीफ दी थी और जाते हुए भी दे रही हैं, और जो सारा साल तक इनसे मजे उड़ाए हैं उनका ख्याल नहीं आ रहा कि सारा साल तक इसके जरिए क्या क्या नियमतें तुमने खाई हैं, किस क्या क्या कुछ चबाया है, और कोई दुनिया की चीज छोड़ी नहीं कि जिससे जिससे चबा चबा कर तुमने लज्जत हासिल न की हो, वो तो भूल गई और आते जाते जो थोड़ी सी तकलीफ हुई थी उसी बोले में कि ये आते भी देते हैं जाते भी देते। अरे खुदा के बंदी पहले शुक्र तो अदा करो कि क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने इस दांतों के जरिए अता फरमाई थी, क्या क्या मजे उड़ाए थे, क्या क्या लज्जतें हासिल की थी। ये मैं कह रहा हूँ बुजुर्गों के सोहबत से ये बात हासिल होती है कि जाविया निगाह बदल जाता है, निगाह उन चीजों की तरफ जाने लगती है जो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचाने वाली हो। तो ये शुक्र की बात है। एक मतलब हजरत वाला की खिदमत में हाजिर हुए गर्मी बड़ी शदीद पड़ रही, तो हर एक आदमी कह रहा है कि आज तो बड़ी सख्त गर्मी है, आज बड़ी सख्त गर्मी है, आज तो बड़ी सख्त गर्मी है, आग बरस रही है, ये हो रहा है वो है, हर एक आदमी ये कहने वाला है। तो हजरत ने फरमाया था गर्मी तो है, ये भी तो देखो कि इस गर्मी में कितने जरासीम मर गए, कितने कीड़े मकौड़े खत्म हो गए, मच्छर खत्म हो गए, इनकी वजह से तुम्हारे जिस्म की फासिद रतूबतें जो है वो खुश्क हो गई, वो जल गई, और इनके नतीजे में तुम्हें जो है पानी ठंडा पीने में कैसा लुत्फ आ रहा है, अगर ये गर्मी ना होती तो इतना ठंडा पानी पीने में क्या मजा आता। तो जितने गर्मी के जो फवायद थे हजरत ने फरमाया था इनकी तरफ तो गौर करो। हर एक आदमी शिकायत करता हुआ आ रहा है कि गर्मी ऐसे हो रही, गर्मी ठंडी हो रही, गर्मी ठंडी हो रही, अरे जो उसमें फवायद की बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जरिए तुम्हें मुनाफे अता फरमाए हैं उनकी तरफ तो ध्यान करो, पहले उनका शुक्र अदा तो करो, और जो तकलीफ मालूम हो रही है वो कह दो उनसे, यार हमसे क्या कहते हो गर्मी ठंडी हो रही, हमसे क्या कहते हो, उन्हीं से कहो जिन्होंने भेजी या अल्लाह गर्मी आपकी नेमत है, आपने इसके अंदर बहुत सारे फवायद रखे हैं, लेकिन हम कमजोर हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसकी तकलीफ को दूर फरमा दी। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया, कहते हो नहीं हम सब कहते हैं नहीं कहते हैं, अरे भाई आज तो बड़ी गर्मी, तो अब ये गफलत की हालत में ये सब बातें कर रहे हैं। बड़ी गर्मी है, क्या नतीजा निकला भाई तुम्हारे इस कहने का? जरा सोचो, ये तुम कहते फिर रहे हो बड़ी गर्मी में, आज तो बड़ी गर्मी, आज तो 45 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो क्या क्या नतीजा निकला इसका? कुछ फायदा मिला तुम्हारे कहने से? गर्मी कुछ कम हो गई? दुनिया में कोई इससे राहत मिली? आखिरत में कोई सवाब मिला? कुछ मिली? इसके पर खिलाफ अगर तुम ये कहते कि अल्लाह की गर्मी के अंदर आपकी जरूरत मशीयत से है, आपकी जरूर हिकमत कार फरमा है, आपको जरूर मसलात है, आपने अपने गर्मी से आगा फरमाई है, लेकिन हम तो कमजोर बनते हैं, तो जो नेमतें इसके अंदर आई है अल्लाह उस पर हम शुक्र अदा करते हैं, हम कमजोर बंदे हैं, इस गर्मी की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह इस गर्मी की तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। जी तो क्या हुआ जिसके कहने से? पहला काम तो यह हुआ कि शुक्र अदा हुआ उन नेमतों पर जो गर्मी के साथ मिलकर आई हैं। ठीक, शुक्र का स्वभाव अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुक्र का स्वभाव बहुत जबरदस्त है। दूसरे, जब तुमने मांगा कि अल्लाह के मैं अपने कमजोरी की वजह से मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, तो अपने फजल करम से मुझे क्या दे दीजिए, इस तकलीफ को दूर कर दीजिए। तीसरा हो गया दुआ, है ना? और दुआ अगर एक तरफ तो खुद इबादत है, बताते खुद हर दुआ पर सवाब मिलता है, वो चीज मिले या ना मिले जो मांग रहे हो, सवाब तो नकद मिल जाता है। तो इस दुआ के ऊपर क्या हुआ? सवाब मिला। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसको इबादत लिखा गया, और उसके बाद फिर हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी तुम्हारे इस कहने के बाद दुआ करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला वाकई कम कर दे उसकी तकलीफ, गर्मी की तकलीफ को। तो दो तो सवाब के पहलू और एक दुनिया ही में नफे का पहलू कि वो तकलीफ खत्म हो जाए। ठीक, अब बताओ ये जो कहते कर रहे हाय हाय करते फिर रहे थे गर्मी को कहते हुए, ये उसने उस अल्लाह के बंदे के पास पहुंचे, उस अल्लाह वाले के पास पहुंचे, उसने दावे निकाह बदल कर उसको जो हाय हाय करते फिर रहे थे उसको कितने सवाब का काम बना दिया, कितने नफे का काम बना दिया। ये मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के पास जाकर बुजुर्गों के सोबत से जो चीज हासिल होती है वो ये है कि वो निकाह बदलती है, दाविया निकाह बदलता है, और दाविया निकाह को बदलने से वो फिक्र पैदा होती है, जिसका मैं कल दो तीन दिन से जिक्र कर रहा हूँ, फिक्र पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान जाता है, उससे शुक्र की तौफीक होती है, उससे दुआ की तौफीक होती है, उससे अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। तो अपने वाले के माजिद पर सल्लल्लाहु अलैहि की बात याद आ गई, पहले भी सुनाई है, जिस वक्त हजरत वालिद पर हजरत माजिद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा कि जिसमें उनके जवान बेटे की मौत की इत्तला आई, हमारे सबसे बड़े भाई मरहूम बारा महमूद अशरफ साहब के वाले उनसे, तो अब अंदाजा कीजिए बाप के ऊपर क्या गुजरती है। उस वक्त दिल की तकलीफ में थे, दिल की तकलीफ की वजह से साहबे कराज थे, उसी में नवासीर जो नवासीर की जो बीमारी होती है वो लाइक हो गई थी, थोड़ा निकल आया था उसकी तकलीफ, ऊपर से जिस्म पर वो डॉक्टर जिसको हर्पीस कहते हैं वो खुंसियाँ निकल आई हर्पीस, जिसके बारे में जो महाजीन हैं वो भी ये कहते थे कि ये ऐसी खुंसियाँ होती हैं कि ऐसा चक्का है जिस्म पर अंगारा रखा हुआ है, पता नहीं मुफ्ती साहब किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। अकीब सईद साहब मरहूम आए थे उस वक्त वायादत करने के लिए, जब निकलने लगे तो मुझसे कहा कि ये बहुत सख्त तकलीफ की चीज़ है, करते तो ऐसा होता है जैसे अंगारा रखा जाता है, पर आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी कुवत ईमानी है बर्दाश्त। जवान बेटे की मौत की इत्तला, उसका सदमा, नवासीर की तकलीफ, दिल की तकलीफ, और फिर ऊपर से ये कुर्सियां जो आग की तरह थी। अल्लाह, तो एक उसी हालत में पहले जुमला निकला मुंह से, फिर फरमाया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया, या अल्लाह रहम फरमा। इस जुमले से यूं मुतरक्के होता है कि गोया अब तक रहम नहीं हो रहा था। मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ अपने इस दुआ पर, और फिर फरमाया कि ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस तकलीफ की नेमत को राहत की नेमत से बदल दीजिए। तकलीफ की नेमत है तो ये भी नेमत है, तो ये भी नेमत, जितनी तकलीफें आती हैं या रंग सदमे पेश आते हैं वो भी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की। तेरी जफा भी नहीं कुछ तेरे कर्म के सिवा, जो कुछ तकलीफ हो रही है अल्लाह जल्ला जलालू की मशीयत से पहुंच रही है, उसमें भी हजारों हिकमतें मसलहतें हैं, और वो भी एक नेमत है, क्योंकि उस तकलीफ पर जो गुना माफ हो रहे हैं, उस पर जो सवाब मिल रहा है, उससे जो दर्जात बुलंद हो रहे हैं, वो सब क्या है, नेमत ही है। लेकिन अल्लाह हम कमजोर है, उस नेमत के मुतहम्मिल नहीं, ऐसी नेमत हमें तो दरकार है हम कमजोरों को, कि जिससे हमें तकलीफ ना हो और बगैर तकलीफ के काम बन जाए। कमजोर आदमी यूं तो जैसे एक इलाज वो है जो ऑपरेशन के जरिए होता है, ऑपरेशन में तकलीफ होती है, लेकिन डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो कोई शख्स ये नहीं समझता कि मुझ पर जुल्म कर रहा है, बड़ी खुशामदें करा के वक्त तय करके पैसे खर्च करके ऑपरेशन से करवाते हो, हालांकि तकलीफ की चीज है, क्योंकि जानते हो कि ये बिल आखिर मेरे लिए फायदा मंद है। लेकिन एक इलाज हुआ है जो बगैर ऑपरेशन के हो जाए तो उसका ज्यादा, बगैर तकलीफ के हो जाए तो उसका, उसकी ज्यादा कदर होती है। तो अल्लाह कैसे भी कर रही है, अल्लाह जो कुछ आप दे रहे हैं तकलीफ है तो ये ऑपरेशन और है मेरे हक में फायदा मंद, आपकी नेमत है, लेकिन मैं हूँ कमजोर, इस ऑपरेशन का तहव्वुल मुझसे नहीं हो रहा, तो लिहाजा आप अपने फजल व करम से ऐसा तरीका निकाल दीजिए मेरी मगफिरत का, मेरे दर्जात की बुलंदी का, मेरे सवाब के हुसूल का, जिसमें तकलीफ का ये मांगो। तो हजरत भाई साहब ने फिर उर्वान बदल कर दुआ ये फरमाई, अल्लाह ये मुसीबत की तकलीफ की नेमत को राहत की नेमत से बदल दी। बलाए के बाद सब दराना सबूर जुमन दूर जमन दूर दार है जुमेदा दूर, ये तो आप आओ श्याला, बलाए के बाद सब दराना सबूर जमन दूर दार है जुमेदा दूर, अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगो, लेकिन मांगो मांगने का उनवान, उसका तरीका और उसके माने ही बदल कर। जब हाय हाय कर रहे थे हम, तुम अगर हम तुम होते तो क्या करते, हाय हाय करते ना, हाय हाय कर रहे थे तो उसमें अल्लाह बचाए वो शिकवे का इस्तेमाल हो सकता था, अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर उसकी मशीयत पर शिकवे का इस्तेमाल हो सकता था, और अल्लाह बचाए शिकवा बड़ी खतरनाक चीज है, और ये तकदीर पर राजी न होना, तकदीर के खिलाफ गिला करना, तकदीर के खिलाफ शिकवा करना, अल्लाह बचाए जहन्नम में आने वाला रास्ता है। लेकिन जब बुजुर्गों की सोहबत हासिल हो गई और बुजुर्गों की नजर पड़ गई, उन्होंने दाविया निगाह बदल दिया, तो दावे निकाह के बदल जाने से बात वही रही कि भाई तकलीफ का इजहार तो है, लेकिन तकलीफ का इजहार इस तरह है कि जिसमें न शिकवा है न गिला है, बल्कि शुक्र भी है और शुक्र के साथ साथ अपनी आजती भी है, अपनी बंदगी भी है, अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी है। यह है जो बुजुर्गों की सोबत से दावे निकाह की तब्दीली पैदा होती है और उससे जो फायदा हासिल होता है, ये फिक्र पैदा होती है। जो लोग अल्लाह के बार बुदा दिन की निगाह देते हैं, मेरे वाले माजिद्लाह ने वाक़ सुनाया, मैं और बड़े भाई साहब माना मोहम्मद रफी साहब, हम दोनों आपके साथ सफर में जा रहे थे, हर वाले साहब के साथ पेशावर जा रहे थे, तो रास्ते में दरियाए अटक पड़ता है, दरियाए अटक का जो पुल है वहाँ गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी रुक गई वहाँ, मंजर बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पहाड़ है और दरिया है, दरिया के अंदर भी दो दरियाओं का संगम भी है वहाँ करीब में, और सब्जा भी है और पहाड़ भी है, अच्छा खूबसूरत मंजर। तो हजरत वाले साहब फिलहाल ने वाक़ सुनाया कि मैं पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की तहरीकी के सिलसिले में हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ यहाँ आया था, पिशावर रेफरेंडम होने वाला सड़क में उसके लिए आए थे, तो फरमाने लगे कि किसी तरह गाड़ी रुक गई यहाँ अटक अटक के पुल के ऊपर गाड़ी रुक गई हमारी, तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा, तो बाहर निकल आए, तो मंजर बड़ा खूबसूरत, तो उस खूबसूरत मंजर को देख कर हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो भाई ये कैसा खूबसूरत मंजर है, और इसमें कहीं पहाड़ है, कहीं दरिया है, कहीं सब्जा है, कहीं तरफ ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, इसमें कोई रब्त नजर आता है तुम्हें, यानी कोई इसमें तरतीब नजर नहीं आ रही। एक तो बाग होता है ना, बाग में क्यारियां लगी हुई है, एक तरफ नहर एक तरफ बह रही है, और जो है एक तरह के फूल एक तरफ है, दूसरी तरह के दूसरी तरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई झाड़ी इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, कोई पहाड़ कितना ऊंचा निकला हुआ है, कुछ थोड़ा सा नीचे नीचे हो गया, कुछ दरिया जो है वो सीधे जाने को या फूट गया, खुद ने खम खा लिया, समझे, सड़क जो है उनके नतीजे में कभी टेढ़ी हो गई कभी मेढ़ी हो गई, इस तरह बेतरतीब मंजर है, लेकिन हुसन देखो कितना है, कितना हुसन है इस बेतरतीबी में। तो फिर फरमाने लगे कि कुरान करीम की आयतों में जो लोग रब तलाश करते हैं तो उनको रब की तलाश करने की जरूरत नहीं, कुरान करीम के आयतों में बाहर रब न होने में ही हुस्न है, जैसा कि इस मंजर में कोई रब नजर नहीं आ रहा, कोई तकलीफ नजर नहीं, पहाड़ का क्या रब समझे थे, और ये जो पहाड़ इतना ऊंचा उठा हुआ है, कहीं बराबर में छोटा सा निकला हुआ है, कहीं दरिया फोड़ गया, कहीं किसी किस्म के कदर नजर आ रहा है, कुछ छोटा कोई बड़ा, इससे जो हुसन पैदा हो रहा है वो आपको बड़े से बड़े मुरक्कब बाग में वो हुसन नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो आयतों में जो आयतें हैं कुरान करीम की, उनका भी मामला यही है कि इनके अदब रब्त में हुसन है, अगर इसमें रब्त पैदा हो तो वो हुसन खत्म हो जाए। अब देखो हम भी गए वहां अटक में, और हमने भी मंजर देखा, और मंजर देखकर हम भी खुश हुए और अच्छा लगा, मगर बस मंजर की तारीफ करके खत्म। लेकिन उनकी निगाह गई तो उससे कैसा नतीजा निकाला, तो बुजुर्गों की सोबत से निगाह जाने लगती है। मैं कह ही रहा था ऐसी बातों की तरफ जो पहले निगाह नहीं जाती, समझे ना, और یہی فائدہ ہوتا ہے, زاویہ نگاہ سے بدل جاتا ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ جب زمانہ صحبت بہاؤ لیا بہتر سرکار اطاعت پہ لیا, حضرت فرما دیتے ہیں حضرت حقیب ابوبکر صلی اللہ تعالیٰ سے تو لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحے کی کچھ دیر کی صحبت کسی اللہ کے بندے کی حاصل ہو جانے کو کہا ہے کہ 100 سالہ طاعت بیریا سے بھی بہتر ہے. تو 100 سالہ طاعت کوئی عبادت کرتا ہے تو بڑی مبالغہ معلوم ہوتا ہے. ہمارا تو سمائے کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر اگر شاید یوں کہتا کہ بہتر صد لکھ سالہ طاعت بیریا, یعنی 100 لاکھ سال سے بھی بہتر ہے, تو بھی مبالغہ نہ ہوتا. وجہ کیا کہ طاعت بیریا جو ہے وہ اگر غلط راستے پر ہو رہی ہے, غلط رخ پر ہو رہی ہے, اور اللہ والے نے اس کو صحیح رخ کر دیا اس لمحے, تو 100 سالہ طاعت سے زیادہ اتنے بہتر ہوں گے. اسی طرح جب زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے تو پھر ہر کام کے اندر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. اللہ وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر تو ہی تو نظرنا ہے. وہ تو جب اس طریق کے اندر جب کسی اللہ والے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا من وابستہ کر دیتے ہیں تو پھر تو اس کو ہر چیز میں جلوہ اسی کر رہا, یہ فکر ہے جو پیدا ہو جاتا ہے, یہ دھیان ہے جو پیدا ہو جاتا ہے, یہ نگاہ ہے جو بدل جاتا ہے. تو ہر جگہ ہر قدم پر ہر تو نظر آتا ہے. وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر تو ہی تو نظر نہ آئے, وہ نظر آتا ہے. اور یہ پہ نظر آتا ہے فکر, کس فکر. تو میرے بھائیوں حضرت فرما دیتے کہ اس کا راستہ کیا ہے, شکر, اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن مبذول ہے ان کا دھیان کرو اور ان کا شکر ادا کرو, ان کا شکر ادا کرو, ان کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. یا اللہ آپ نے آنکھ دیا اللہ بلک الحمد لک شکر, الحمد للہ آنکھ کے در پین آئی ہے اللہ بلک الحمد لک شکر, ارے تمہیں کیا پتا کیا کارخانہ لگا دیا اللہ نے یہ آنکھ کے سر. وہ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آنکھ جو ہے اس میں جو ہے چھلیاں ہیں پٹھے ہیں آنکھ کے اندر, تو یہ اس کا حال یہ آنکھ کا کہ یہ اس کو اندھیرے میں کچھ اور طریقے سے دیکھے گی اور اندھیرے سے باہر روشنی ہو تو اور طریقے سے دیکھے گی. نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی جو اندھیرے میں جاتا ہے روشنی سے اندھیرے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کی مناسبت سے اس کے اسباب جو ہے وہ سکیڑ لیتے ہیں, سکیڑ لیتے ہیں تاکہ اندھیرے میں بھی کچھ کچھ کی پائی دے جائے, اور جب روشنی میں جاتا ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں اخبار. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پٹھے سکڑتے اور پھیلتے ہیں ان میں یہ سکڑنے اور پھیلنے میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں, 7 میل. آپ کو شاید دیکھو گے 1 انچ بھی نہیں, لیکن وہ جو ان میں حرکت ہوتی ہے پٹھوں میں تو وہ چھوٹے بڑے سارے پٹھوں کے حرکات کو ملایا جائے گا تو 7 میل کا فاصلہ طے کر. تو پھر آپ کے ایک دم سے گھس گئے اندھیرے میں, سمجھے نا, اندھیرے میں گھس گئے اچانک, کوئی کرنے والا ہے جو کر رہا ہے, کوئی کرنے والا ہے جو تمہاری اس حرکت کو درست کر رہا ہے. ایک دم سے تم چاندنے میں آ گئے बता फिर तुम्हें क्या हो रहा है। अजीब कुदरत है, हंस पल के जरूर चपकाई तुमने, लेकिन तुम्हें पता नहीं किस कारखाने में क्या हो रहा है। तो और फिक्र की आदत डालो, एक एक चीज एक एक नेमत का शुक्र अदा करने की आदत डालो। जब कोई चीज दिल को भाए, अच्छी लगे, उस पर शुक्र अदा करो। हवा का ठोका चला, ठंडा लगा, अल्लाह मलकर हम तो लगे शुक्र, समझे? छाए में आ गए धूप से, अल्लाह मलकर हम, ये शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने की रट लगाओ। और जो जो ये फिक्र करते रहोगे, उसी हिसाब से इंशाअल्लाह ये तफक्कुर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो पैदा होगा, और उससे मजीद जिक्र की तौफीक होगी। और आखिर में हजरत उन्होंने रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाकर सारे दिन की का जायजा लो, क्या क्या अच्छे हालात मिठाए, क्या क्या खुशियाँ हासिल हुई, क्या क्या लज्जतें मिली, क्या क्या फराहतें मिली, उन सब का तसव्वुर करके, एक एक का तसव्वुर करके, अल्लाहु लक अलहम्दु लक शुक्र, अल्लाहु लक अलहम्दु लक शुक्र, अल्लाहु लक अलहम्दु लक शुक्र, अल्लाहु लक खूब शुक्र अदा। और वो जो जामे कलिमात है शुक्र के, अल्लाहु लक अलहम्दु हमदन दाइमन मा दवाक, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مزيته، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين، وعند تنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك، ومداد كلماتك، ورضا نفسك، وعدد خلقك، وعدد نعمك. يا دعاء कहो ये शुक्र अदा करो। और ये शुक्र ऐसी चीज है, हमारे तो फरमाते थे किसी को पता भी नहीं चला तुमने क्या से क्या कर दिया, क्या इबादत कर अंजाम दी। दिल ही दिल में करते रहे, ज्यादा जबान से कह दिया, किसी को पता भी नहीं चला। कोई नमाज पढ़ रहे होते, नफली नमाज पढ़ रहे होते, नफले पढ़ रहे होते, लोग देखते तो लोग कहते बोले आप जाहिर आदमी है, उसमें हो सकता तुम्हारे दिल में भी दिखाने का ख्याल आ जाता। लेकिन ये जो कर लिया तुमने, दिल ही दिल में जो काम कर दिया, ये क्या है? ये एक ऐसी इबादत है कि किसी को पता नहीं। मियां ने आज को माटू रब प्रेस किरामन का तिकीरा हम खबर है। ये अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला से बस रास्ता है, उसी का शुक्र अदा हो रहा है, उसी का जिक्र है, उसी की फिक्र है। तो इतनी बड़ी बात है, इसकी आदत डालने की कोशिश करें, इससे इंशाअल्लाह ताला फिक्र पैदा होगी और जिक्र कसीर की नेमत हासिल होगी। अल्लाह ताला को सब शुक्र की तौफीक दे। अल्लाह को तआला की तौफीक दे। صلى الله تعالى